रविवार 14 अगस्त दिन भर के सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने जश्न आजादी को किया कश्मीर की आजादी के नाम, भारत में कड़ी प्रतिक्रिया।
हम कंडेम करते हैं पाकिस्तान के इस बयान को, ये फ्रस्ट्रेशन में दिया गया बयान है। कश्मीर के लोगों ने पूरी तरह से वहाँ अलगाववादी ताकतों को खारिज किया है, लोकतंत्र में पूरी आस्था व्यक्त की।
न्यूयॉर्क में एक इमाम की हत्या के बाद इलाके के लोगों में फैला डर और गुस्सा, पुलिस का दावा हत्या का धर्म से ताल्लुक नहीं। संडे दिन भर में आज बातचीत जस्टिस मार्कंडे काटजू से।
इधर टेंडेंसी आ गई है कुछ जजेस में पॉपुलिस्ट होने की, पॉपुलैरिटी सीकर्स, तालियां बजे, वाह क्या हुआ, छक्का मारा है खूब।
ओलंपिक में साइना नेहवाल का सफर खत्म, खबरें होंगी और भी, लेकिन सबसे पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। पाकिस्तान ने आज अपने स्वाधीनता दिवस को कश्मीर के नाम किया है। भारत प्रशासित कश्मीर में बीती 8 जुलाई से हिंसा और अशांति की स्थिति है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि वहां के प्रदर्शनकारियों ने अपनी आज़ादी की भावना बरकरार रखी है। वहीं भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि उनका देश कश्मीर और कश्मीरियों के लिए संघर्ष करता रहेगा। भारत के राजनीतिक दलों ने बासित के बयान की आलोचना की है। कश्मीर पर पाकिस्तान से मिले बातचीत के प्रस्ताव के जवाब में भारत ने कहा था कि सीमा पार के चरमपंथ को पाकिस्तान का समर्थन बंद करने का मुद्दा भी बातचीत में शामिल होना चाहिए। कश्मीर मुद्दे पर एक हालिया बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाक प्रशासित कश्मीर भारत का हिस्सा है। नाइजीरिया के चरमपंथी संगठन बोको हराम ने करीब 50 लड़कियों की मौजूदगी वाला एक वीडियो जारी किया है। संगठन का दावा है कि ये साल 2014 में चिबोक से अगवा की गई छात्राएं हैं। बोको हराम ने 270 छात्राओं को अगवा किया था। इसके साथ मौजूद एक हथियार बंद शख्स ने अपने संदेश में कहा कि करीब 40 लड़कियों की शादी हो गई जबकि बाकी सरकार के हवाई हमले में मारी गईं। वीडियो में मौजूद एक छात्रा ने सरकार से छात्राओं की सुरक्षा के लिए बोको हराम के कैदियों को रिहा करने की अपील की। सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की पुलिस ने एक इमाम सहित 2 लोगों की हत्या के मामले में एक संदिग्ध का स्केच जारी किया है। पुलिस का कहना है कि ये मानने का कोई कारण नहीं है कि कल हुई हत्या के पीछे कोई धार्मिक कारण था, लेकिन मुस्लिम समुदाय के नेताओं का कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम विरोधी बयानों के बाद मुसलमानों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। न्यूयॉर्क के डिप्टी इंस्पेक्टर हेनरी साउटनर ने कहा, फिलहाल हत्या का मकसद सामने नहीं आया है। अभी हम वीडियो साक्ष्य और गवाहों को जुटाने के लिए इलाके में जांच कर रहे हैं। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि उन्हें उनके मजहब की वजह से निशाना बनाया गया। ये थे हेनरी साउटनर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सेना का कहना है कि बेनी शहर के पास करीब 30 आम लोगों के शव मिले हैं। सेना ने आशंका जताई है कि इनकी हत्या विद्रोही समूह ADF ने की है। सेना के मुताबिक इनकी हत्या बीती रात की गई। ये विद्रोही समूह मूल रूप से युगांडा से जुड़ा है। इराक की कुर्द सेना का कहना है कि उसने मोसूल के करीब इस्लामिक स्टेट के कब्जे से 5 गांवों को आज़ाद करा लिया है। सुबह अमरीकी सेना की अगुवाई वाली सेना ने यहाँ हवाई हमले किए। संघर्ष के दौरान चरमपंथियों ने कथित तौर पर विस्फोट से भरे 2 वाहनों से निशाना बनाने की कोशिश की। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर संडे दिनभर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं निखिल रंजन। आज 14 अगस्त है और पाकिस्तान अपनी आजादी का जश्न मना रहा है। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि इस बार का जश्न कश्मीर की आज़ादी को समर्पित है। और उसके बाद दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भी यही बात दोहरा दी। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी उच्चायुक्त के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूरा हाल सुनिए अमर शर्मा से।
भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने आज़ादी का जश्न मनाने के दौरान कश्मीर की आज़ादी की बात छेड़ी है। बासित ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बयान का जिक्र कर कहा कि इस बार पाकिस्तान की जश्न आज़ादी कश्मीर की आज़ादी को समर्पित है। नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान बासित ने कहा,
जम्मू और कश्मीर की भी तहरीक आज़ादी इंशाल्लाह अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। जहां तक जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक है, आपने वज़ीर-ए-आज़म के पैगाम में आज सुना कि इस साल का जश्न आजादी हम कश्मीर की आजादी के नाम करते हैं।
इसके साथ ही बासित ने यह भी कहा कि उनका देश भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए कोशिश करता रहेगा।
पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि हमारे भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हों और हमने इसके लिए कोशिश भी की है और ये ताल्लुकात बेहतर हों, बराबरी की सतह पे और जो हमारे दो तरफा तनाजात हैं उनकी बुनियाद पे इन ताल्लुकात को बेहतर होना है।
भारत में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने अब्दुल बासित के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। वहीं बीजेपी ने भी बासित के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा ने बीबीसी से बातचीत में कहा,
देखिए तो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान एक तरीके से एक्सपोज होता है कि वो किस तरह से भारत के अंदरूनी मसलों में दखल दे रहा है और लगातार वहां पहले वो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध लड़ता रहा कश्मीर के लिए और अब वो पीछे के रास्ते से युद्ध लड़ रहा है और वहां लगातार आतंकवादी भेज रहा है और उनको वहां सपोर्ट कर रहा है और कश्मीर के लोगों ने पूरी तरह से वहां अलगाववादी ताकतों को खारिज किया है, लोकतंत्र में पूरी आस्था व्यक्त की। हम कंडेम करते हैं पाकिस्तान के इस बयान को, ये फ्रस्ट्रेशन में दिया गया बयान है और ये जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उन्होंने एक्सपोज किया है पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे कि किस तरह से बलूच के अंदर और पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर के अंदर वहां की फौज बर्बरता कर रही है, मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रही है और वहां के लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, अपनी बात कहने का हक नहीं है, तो ये फ्रस्ट्रेशन में दिया गया पाकिस्तान का बयान है। दुनिया भी उसको कंडेम कर रही है, हम भी उसको कंडेम करते हैं।
दो दिन पहले ही पाकिस्तान की तरफ से भारत के पास कश्मीर पर बातचीत की पेशकश की गई। भारत ने इसके जवाब में कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ सीमा पार आतंकवाद पर बातचीत का स्वागत करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा, भारत पाकिस्तान रिश्तों में भारत पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद जैसे प्रासंगिक मुद्दों पर बातचीत का स्वागत करेगा। भारत ने बातचीत के मुद्दों में बहादुर अली जैसे कथित पाकिस्तानी चरमपंथी, सीमावर्ती इलाके में अशांति और हिंसा, हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन जैसे चरमपंथियों की परेड, मुंबई हमले की सुनवाई और पठानकोट हमले की जांच को शामिल किया है। पाकिस्तान ने कश्मीर में मदद भेजने की पेशकश भी की थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसके जवाब में कहा,
क्षेत्र के अन्य देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सीमा पार से घुसपैठ, हथियार, नशीले पदार्थ और जाली मुद्रा की सप्लाई जैसे पाकिस्तान के ट्रेडमार्क एक्सपोर्ट्स को पहले ही बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त कर चुके हैं। हम पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की इस पेशकश को खारिज करते हैं।
पाकिस्तान और भारत में आजादी के जश्न का मौका है, लेकिन दोनों देशों के बीच जिस तरह की बातचीत हो रही है उसने माहौल का मूड बदल दिया है। इसी दौरान सीमा पर पुंछ सेक्टर में दो बार गोलीबारी होने की भी खबर आई है।
रिपोर्ट सुना रहे थे अमर शर्मा। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित के बयान पर भारत के राजनीतिक हलकों में कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। कूटनीतिक परंपराओं को जानने वाले भी इस बयान को सही नहीं मान रहे हैं। मैंने पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे जी पार्थ सारथी से पूछा कि कितना उचित है एक राजदूत का इस तरह बयान देना।
देखिए, जो बयान इन्होंने दिया वो जो प्रधानमंत्री का भाषण उसी के आंकड़े हैं, लेकिन हमारी एक कूटनीतिक परंपरा रहती है कि हाँ कठोर बयान राजधानी में दी जाती हैं, लेकिन जो राजदूत है वो या उस बयान को दोहराता है या लेकिन अपने तरफ से बोले तो नम्रता से बोलते हैं। कारगिल के युद्ध के जमाने में, हाईजैकिंग के जमाने में मैं राजदूत था, उच्चायुक्त था पाकिस्तान में, हाँ सख्त बयान दिल्ली से आए, लेकिन मेरा कर्तव्य ये था कि ऐसे ना मैं कुछ ना कहूँ जिससे मेरे जो निजी संबंध हैं वो बिगड़ जाएं और लोग मुझे नकारात्मक तौर से देखने लगे। इस तरह के बयान एक राजदूत या उच्चायुक्त को देना कूटनीतिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है और इससे वो पाकिस्तान को ज्यादा फायदा नहीं मिल। दूसरी बात ये कि जहां तक दिल्ली में मंत्रालयों का सवाल है, समझ ये है कि जो मौजूदा उच्चायुक्त हैं पाकिस्तान सेना के जरा ज्यादा निकट है, ना कि विदेश मंत्रालय के।
जी पार्थ सारथी भारत के पुराने उच्चायुक्त रहे हैं पाकिस्तान में। ये इनसे पूरी बातचीत आपको हम सुनवाएंगे अपने अगले कार्यक्रम घटना चक्र में और साथ ही कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान की बयानबाजी और आज़ादी के जश्न के बीच आप ये भी जान रहे हैं कि कश्मीर में कर्फ्यू है और इस दौरान वहाँ के लोगों पर क्या कुछ बीत रही है ये भी सुनिएगा अगले कार्यक्रम घटना चक्र में।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी के जश्न का भी मौका आ चुका है। अब से कुछ ही घंटों बाद जो है वो पल आएगा जब भारत को 70 साल पहले आज़ादी मिली थी और इसे ठीक पहले परंपरा के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और क्या कहा उन्होंने सुनिए।
इन दीज 4 years आई ऑल्सो सॉ विथ सम डिस्क्वाइट फोर्सेस ऑफ डिवाइसिवनेस एंड इनटॉलरेंस।
इन चार वर्षों में मैंने कुछ अशांत, विघटनकारी और असहिष्णु शक्तियों को सिर उठाते हुए देखा है। कमजोर वर्गों पर हुए हमले पथभ्रष्टता हैं और ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र के खिलाफ हैं, जिससे सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। हमारे समाज और शासन तंत्र की सामूहिक समझ ने मुझे ये विश्वास दिलाया है कि ऐसे तत्वों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और भारत की शानदार विकास गाथा बिना रुकावट के आगे बढ़ती रहेगी। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शब्द। और आइए अब रुख करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। न्यूयॉर्क के एक इमाम की मौत के बाद इलाके के लोगों में डर और गुस्सा फैल गया है। हालांकि पुलिस ने इस मौत को धर्म से जोड़कर देखने से साफ मना कर दिया है, लेकिन लोग हैं कि वो डरे हुए हैं। न्यूयॉर्क से पूरा ब्यौरा भेजा है हमारे सहयोगी सलीम रिजवी ने।
न्यूयॉर्क के ओजोन पार्क इलाके की अल फुरकान मस्जिद के पेश इमाम मौलाना एकुंजी और उनके एक साथी को शनिवार को दोपहर की नमाज के बाद मस्जिद के नजदीक ही सड़क पर चलते हुए करीब से सर में गोली मारी गई थी। इस इलाके में बांग्लादेशी मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और इस गोलीबारी की घटना के बाद लोगों में गुस्सा भी है और भविष्य में हमले होने का खौफ भी। हमले की खबर फैलते ही करीब 300 लोग मस्जिद के करीब इमाम के कत्ल के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जमा हो गए थे। इस समुदाय के कई लोग हमले में मारे गए इमाम को अच्छी तरह जानते भी थे। बांग्लादेशी मूल के शब्बीर आलम हमले में मारे गए इमाम के पीछे कई वर्षों से नमाज पढ़ते रहे हैं।
The imam, we know him better. So I don't think they can have any enemy or someone who doesn't like them.
हम इमाम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनका कोई भी दुश्मन नहीं था। बांग्लादेशी के अलावा अन्य समुदायों में भी उनको कोई नापसंद नहीं करता था। वो बहुत नेक इंसान थे। उन्हें किसने मारा और क्यों मारा, ये तो अल्लाह ही जानता है। शब्बीर आलम कहते हैं कि वो और इलाके में रहने वाले कई लोग अब सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हो गए हैं। शब्बीर आलम कह रहे थे, हम तो सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हो गए हैं। अब तो हमें ये भी डर लग रहा है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें तो क्या वहाँ वो सुरक्षित रहेंगे। हम सब बहुत डरे हुए हैं। इसी इलाके में रहने वाले एक युवा मोहम्मद रिजवान 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं। रिजवान मानते हैं कि ये हमला तो धर्म के आधार पर नफरत से प्रेरित था। बहुत से लोग तो समझ रहे हैं कि ये कोई रहजनी का मामला था, लेकिन नहीं, ये तो धर्म के आधार पर नफरत से प्रेरित हमला था। और अब यहाँ पुलिस के विशेष दस्ते सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने चाहिए। इस इलाके के कई लोग रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम विरोधी बयानों को भी अमरीका में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा में तेजी का जिम्मेदार मानते हैं। इस बारे में मोहम्मद रिजवान कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे बयानों से हालात और खराब हो रहे हैं। वो जो भी मुंह में आता है बक देते हैं। हो सकता है ये हमला भी उसी का नतीजा हो। रिजवान बताते हैं कि हमले में मारे गए इमाम ने उनको कुरान पढ़ना सीखने में भी मदद की थी और वो मस्जिद में जमात के साथ नमाज भी बराबर पढ़ने जाते थे। उधर न्यूयॉर्क पुलिस का कहना है कि अभी इस बात के कोई संकेत नहीं है कि इन लोगों को उनके धर्म की वजह से निशाना बनाया गया। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और कत्ल स्थल के करीब घरों और इमारतों में लगे कैमरों की जांच की जा रही है और वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ हो रही है। 55 वर्षीय इमाम मौलाना एकुंजी 2 साल पहले ही बांग्लादेश से न्यूयॉर्क आकर बसे थे। कातिलाना हमले में उनके साथ मारे गए थाराउद्दीन की उम्र 64 साल थी और वो भी 2-3 वर्ष पहले ही अमरीका आए थे। इस हमले की जांच में लगे एक पाकिस्तानी मूल के पुलिस अधिकारी अदील राणा ने बीबीसी हिंदी से बात करते हुए कहा कि इमाम के मारे जाने से ये मामला संगीन हो गया है।
ऑब्वियसली सेंसिटिव इसलिए कि एक इमाम का हुआ है और दूसरा सेंसिटिव ये है कि कोई मोटिव नज़र नहीं आ रहा अभी तो, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हर एक यूनिट्स के यहाँ पे लोग आए हुए हैं जो एक्टिवली परसू कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को। विटनेसेस ढूंढ रहे हैं, कैमरेज ढूंढ रहे हैं, तो जो भी होगा तो ऑब्वियसली यू नो पुलिस डिपार्टमेंट से एक्टिवली परसू करेगी।
लेकिन पुलिस ने अभी तक इस कत्ल के मामले में न तो कोई गिरफ्तारी की है और न ही इसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत से प्रेरित हमला करार दिया है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
ये बीबीसी रेडियो है और आप सुन रहे हैं संडे दिनभर निखिल रंजन के साथ। जस्टिस मार्कंडेय काटजू सख्त आलोचनाओं और बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने बीसीसीआई में सुधारों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई जस्टिस लोढ़ा कमेटी और उसकी सिफारिशों को गैर कानूनी बता दिया। बीसीसीआई ने मार्कंडेय काटजू से इस बारे में सलाह मांगी थी। संडे दिनभर में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मार्कंडेय काटजू से एक खास मुलाकात, जिसमें उन्होंने इन विषयों पर खुलकर अपनी राय रखी है। उनसे बात की है हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने।
बीबीसी हिंदी के इस विशेष इंटरव्यू में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। उनका नाम है जस्टिस मार्कंडे काटजू। बहुत जाने माने जज रहे हैं और उसके बाद से प्रेस काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं, और उसके बाद से अपने खुले विचारों के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने थॉट्स के लिए अक्सर विवादों में भी घिरे रहे हैं। काटजू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बीबीसी हिंदी के स्टूडियोज आने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल आप फिर से न्यूज में हैं। बीसीसीआई, जो भारत की जो क्रिकेट बॉडी है, उसने आपको अपॉइंट किया है एज ए लीगल एडवाइजर, ताकि जस्टिस लोधा कमेटी, जिसने तमाम तरह के बीसीसीआई में सुधारों की, रिफॉर्म्स की बात कही है, उस मसले पर आप बीसीसीआई को एडवाइस कर सकें। आखिर बीसीसीआई क्यों आई आपके पास?
देखिए, बीसीसीआई क्यों आई वो तो बीसीसीआई से आप पूछिए, मगर मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। जहाँ तक ये विचार है कि बीसीसीआई में गड़बड़ियाँ हैं, हो सकती हैं, कई क्षेत्रों में गड़बड़ियाँ हैं, कानून के क्षेत्र में गड़बड़ियाँ हैं, कई जजेस भ्रष्ट हो गए हैं, बहुत विलंब करते हैं फैसले देने में, आपकी मीडिया क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ियाँ हैं, बड़े कंप्लेंट्स हैं पेड न्यूज़ के बारे में इत्यादि, और बॉलीवुड के बारे में कंप्लेंट्स हैं, मेडिकल प्रोफेशन, कई क्षेत्रों में गड़बड़ियाँ हैं। गड़बड़ियाँ दूर करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सवाल ये है कि गड़बड़ियाँ दूर करने के चक्कर में क्या आप कानून को ताक में रख देंगे, संविधान को ताक में रख देंगे? ये मेरी मुख्य आपत्ति है। अब देखिए, क्या क्या गड़बड़ियाँ किया हैं सुप्रीम कोर्ट ने और लोधा कमेटी। पहले तो ये समझिए कि हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अलग अलग क्षेत्र हैं। कानून बनाना विधायिका का काम है, न्यायपालिका का काम नहीं है। अगर हाँ, कोई कानून बनाया है विधायिका ने, तो न्यायपालिका उसको एनफोर्स कर सकती है, मगर न्यायपालिका खुद कानून नहीं बना सकती है। यहाँ तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है 18 जुलाई 2016 का, उससे तो कानून बना दिया उन्होंने। लोधा कमेटी की सिफारिशों को कह दिया कि वो इम्प्लीमेंट हो। सुप्रीम कोर्ट इतना कर सकती थी कि जब लोधा कमेटी के सिफारिशें आई उसके पास, तो उनको आगे दे सकती थी विधायिका के पास, वो अपनी भी सिफारिश कर सकती थी। फिर मगर फिर वो विधायिका का काम था कि उनको मंजूर करें या न करें या पार्शली एक्सेप्ट करें। डायरेक्शन देना कि इनको इन्फोर्स किया जाए, ये बिल्कुल इलीगल काम किया है, अगेंस्ट संविधान के खिलाफ।
लेकिन काटजू साहब, अगर हम गौर करें कि आखिर लोधा कमेटी ने क्या कहा है, लोधा कमेटी का कहना है कि साहब बीसीसीआई में जो है, पहली बात तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, मिनिस्टर्स ब्यूरोक्रेट्स उनके मुताबिक उनको बीसीसीआई का पदाधिकार नहीं लेना चाहिए आगे चल के। 70 साल की कैप लगा दी उन्होंने, उन्होंने कहा साहब 70 के ऊपर आप नहीं हो सकते, जो कि प्राय अक्सर होता था। उन्होंने कहा स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दिए, प्रॉपर इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, एसोसिएशंस के बारे में बात कही उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा टीवी राइट्स को लेकर ट्रांसपेरेंसी लाइए, जो तमाम लोगों के आरोप है कि नहीं थी। तो आखिर गलत क्या कहा लोधा कमेटी ने, जिसके खिलाफ अब आप जो है बीसीसीआई को एडवाइस कर रहे हैं?
देखिए, कुछ सिफारिशें सही हो सकती हैं, मगर कुछ सिफारिशें मुझे लगता है गलत भी हैं। जैसे 70 साल का एज कैप, ये इसकी क्या ज़रूरत थी? कई जो अनुभवी लोग हैं 70 साल से ज़्यादा हो गए, क्यों हटाया जाए? देखिए, एज कैप लगाना एक तो ये जुडिशरी का काम नहीं है, ये लेजिस्लेचर का काम। इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि एज ऑफ सुपर एनुएशन नहीं फिक्स कर सकती है जुडिशरी, ये लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का काम है। आपका माननीय न्यायपालिका कह दे कि कोई मिनिस्टर या MP 65 साल की उम्र से ज़्यादा नहीं रह सकता, तो ये क्या संवैधानिक है? या कह दे आपके मीडिया में कोई 9 साल से ज़्यादा मीडिया में नहीं रहेगा, ये क्या जुडिशरी का काम है? नहीं, ये लेजिस्लेचर का काम है। तो कहने का मतलब ये अलग बात है कि सिफारिशें सही थी गलत हैं, उस पर चर्चा हो सकती है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। कुछ हो सकती हैं सही हो सकती हैं, मगर मैं मौलिक बात कर रहा हूँ कि ये क्या न्यायपालिका का काम है कि ऐसे कानून बनाना, ये तो कानून बनाना हो गया ना, ये कानून बनाना नहीं काम है न्यायपालिका, कानून बना विधायिका का काम है, और अगर विधायिका कानून बनाए तो उसके हिसाब से फैसला करना, ये न्यायपालिका का काम। मेरी जो मुख्य आपत्ति है कि न्यायपालिका क्यों कानून बना रही है, ये तो बिल्कुल असंवैधानिक चीज़ हो गई। दूसरी आपत्ति मेरी ये है कि देखिए, अगर किसी अथॉरिटी, स्टेटूटरी अथॉरिटी को कोई काम दिया गया है, तो न्यायपालिका वो पावर यूजर्प नहीं कर सकती है। वो कह दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि हाई कोर्ट बस परमिट नहीं दे सकता है, क्योंकि बस परमिट देना ये रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का काम है। तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर कुछ कंप्लेंट हो अगेंस्ट सम सोसाइटी लाइक बीसीसीआई, तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज अंडर दैट एक्ट वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, और इन्वेस्टिगेशन में अगर पाए कि कंप्लेंट सही है तो दंड दे सकता है, यहाँ तक कि उस सोसाइटी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो ये लोधा कमेटी या जुडिशरी ये काम कैसे कर सकती है जो काम रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ का है। दूसरी चीज़, सेक्शन 12 ऑफ तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में है कि अगर कोई सोसाइटी ने बनाए हैं अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाय लॉ रूल्स वगैरह, तो उसको अमेंड करने का तरीका है कि वो सोसाइटी हैज़ टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी 2/3 मेजोरिटी, नॉट बेयर मेजोरिटी कर, तब वो अमेंड हो जाएगा। तो सोसाइटी ये चेंज कर सकता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपने रूल्स। यहाँ तो लोधा कमेटी ने पूरा नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, सारे यानी पुराना कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश करके कह दिया कि जैसे कि पहले था कि 5 वाइस प्रेसिडेंट होंगे, लोधा कमेटी ने कहा 1 वाइस प्रेसिडेंट होगा। पहले 14 वर्किंग कमेटी मेंबर्स थे, लोधा कमेटी ने कहा नहीं 9 होंगे, और उसमें भी किस कैटेगरी से आएंगे वो 9, वो सब यानी इस तरीके से उन्होंने तमाम यानी बिल्कुल रूल्स ऑफ सोसाइटी चेंज कर दिए जो सोसाइटी ही कर सकती थी। तो यानी कि जजमेंट दे दिया इन वायलेशन ऑफ लॉ, क्या कोई जज फैसला दे सकता है कानून को तोड़ के, ये बिल्कुल अनुचित चीज़ है।
लेकिन बीसीसीआई जो है वो, आप तो बीसीसीआई के लिए आर्ग्यू कर रहे हैं।
आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मेरी राय मांगी, मैंने राय दी।
आपने राय दी, लेकिन बीसीसीआई अब आपकी लगता है राय भी नहीं मान रहा है। आपने बीसीसीआई से कहा था कि आप साहब उनके पास मत जाइए कल वाली मीटिंग
नहीं
में।
वो बाद में उन्होंने दोबारा मुझसे पूछा, मैंने कहा ऐसा है आप चले जाइए मगर कह दीजिए कि देखिए हम रिव्यू में जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, तो लिहाजा आप और ये रिपोर्ट है जस्टिस काटजू की, आप देख लीजिए, बस इतना कह दीजिए। तो उन्होंने कहा, तो उस पर जो मुझे सेक्रेटरी बीसीसीआई मिस्टर शिर्के ने बताया कि शायद उन्होंने कहा अक्टूबर तक इम्प्लीमेंट करिए सब कुछ के, तब तक टाइम मिल गया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में जाएंगे।
तो क्या रिव्यू में जा रही है
बीसीसीआई? हाँ, जा रही है। और मैंने ये भी कहा कि हालांकि रिव्यू उसी बेंच में जाती है, जस्टिस खलीफुल्ला तो रिटायर हो गए, मगर ठाकुर साहब कोई और जज को अपॉइंट कर, मैंने कहा ठाकुर साहब इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम सिटिंग, क्योंकि तमाम बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जो दिखाए गए थे उनको जब बहस हो रही थी उन्होंने बिल्कुल ताक पे रख दिया। जो जजमेंट जो कहते हैं कि जजेस कैन नॉट लेजिस्लेट, आप मेरे रिपोर्ट पढ़िए, उसमें पेज पैराग्राफ 5 से लेकर 37 तक और आगे भी मैंने 20 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट किए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि बिल्कुल अनुचित है कि जज लोग कानून बना रहे हैं। ये कानून बनाना तो विधायिका का काम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने सीमा में रहना आप वो नहीं समझ रहे हैं, वो बिल्कुल इन्हें जैसे कि मन मना के बैठ गए। ये क्या तरीका है जज का, आप सीजीआई हो गए या खुदा हो गए, आपको यू हैव टू बिहेव इन अकॉर्डिंग विद लॉ।
वो दो जजेस की बेंच है,
तो दो जजेस बेंच, क्या 5 जजेस बेंच की फैसले नहीं माने? 5 जजेस बेंच के कई फैसले दिखाई गए, 3 जजेस बेंच के कई फैसले जो उन पे बाइंडिंग थे सब, इन्हें उसका जिक्र तक नहीं किया आपने जजमेंट में, बिल्कुल ये जुडिशियल इनडिसिप्लिन नहीं है, जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट नहीं है। ठाकुर इज गिल्टी ऑफ जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट, आई अक्यूज हिम ऑफ दैट, ही इज नॉट फिट टू सिट इन द रिव्यू पिटीशन। ये कोई तरीका है कि जज हो गए तो हम बातचीत करेंगे? यानी ये जो इधर टेंडेंसी आ गई है कुछ जजेस में पॉपुलिस्ट होने की, पॉपुलैरिटी सीकर्स की, तालियां बजे वाह क्या चौवा छक्का मारा है, खूब बीसीसीआई को हमने फिक्सअप कर दिया, ये बड़ी गलत चीज है। जजेस शुड नॉट बी पॉपुलैरिटी सीकर्स। लोधा कमेटी अपनी पॉपुलैरिटी सीकिंग कर रहे हैं, जैसे कि वो नाइट इन शार्मिंग आर्मर, ये जो मैंने एक्सप्रेशन यूज किया, चला रहे हैं अपना फतवे पे फतवा,
लेकिन जो
बड़ी गलत चीज है
ये काजू साहब, इस पर आर्ग्यूमेंट ये है कि एक आम राय जो है वो ज्यादातर आम राय वही है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं।
देखिए आम राय, ये कानून के विशेषज्ञ तो है नहीं आप लोग, आप लोगों को समझना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि जो गड़बड़ियां हैं बीसीसीआई में और जगह में, न्याय के क्षेत्र में न्यायपालिका में बहुत गड़बड़ियां हैं, सब हटनी चाहिए, इस पे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति है कि ये गड़बड़ियां हटाने के चक्कर में आप संविधान को ताक में रख देंगे, कानून को ताक में रख दें।
लेकिन आप जो चाह रहे हैं बीसीसीआई वो नहीं कर रहा है, वो तो उनके पास जा रहा है, तो हम दोबारा लौट के आएंगे।
नहीं, वो तो भाई क्योंकि उन्होंने बुलाया था, अगर नहीं जाते तो वो रेकमेंड करते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दो और इंटरिम बीसीसीआई कमेटी डिसॉल्व एन इंटरिम कमेटी। सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी कर सकती है अनबंड के ऑर्डर। तो मैंने बाद में राय दिया कि भाई चले जाओ, वरना वो रिपोर्ट कर देंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अनबंड कुछ ऑर्डर पास कर देगा, तो चले जाओ, कह दो कि साहब हम रिव्यू में जा रहे हैं, तो लिहाजा आगे मत बढ़िए आप और मेरी रिपोर्ट दिखा दीजिए। तो उस पर उन्होंने शायद अक्टूबर तक टाइम दे दिया है, कुछ जो मुझे बताया गया
15 अक्टूबर के पहले पहले बीसीसीआई ने कहा है कि
तब तक रिव्यू होगी, इसके पहले रिव्यू होगी, मैंने कहा सर। और रिव्यू में मैंने कहा आप मेंशन करिए, और मैंने फेसबुक एक पोस्ट डाला है कि जस्टिस ठाकुर इज डिसक्वालीफाइड फ्रॉम सिटिंग इन द रिव्यू बिकॉज ही इज मिसकंडक्टेड हिमसेल्फ, तो लिहाजा कोई और बेंच के सामने जाए और ओपन कोर्ट में हियरिंग हो, ये नहीं कि बस चेंबर में बिना वकील को सुने डिसमिस कर दे।
हो सकता है कि जस्टिस ठाकुर पर भी बंधन हो जिनके बारे में आपने इस तरह की बातें कही हैं और अब आप पे नहीं है।
वो बंधन नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, वो तो अंड मंड बोले जा रहे हैं, फतवे फरमान इशू किए जा रहे, जो उनको बंधन है वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं वो, यही तो मेरी आपत्ति है। बाइंडिंग जजमेंट्स हैं उन पर, उनको इग्नोर कर रहे हैं, बादशाह सलामत हो गए हैं, जो मन चाहे बाएं दाएं किए जाओ। I have strong criticism of Justice Thakur. He is not behaving like a proper judge.
बहुत बहुत शुक्रिया फॉर्मर जस्टिस मार्कंडे का जी साहब बीबीसी के स्टूडियोज आने में और हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
भूतपूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव। और अब खबरें ओलंपिक से। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को रियो ओलंपिक में बड़ा झटका लगा है। विश्व में पांचवी रैंकिंग की खिलाड़ी साइना को 61वें नंबर के खिलाड़ी यूक्रेन की मारिया यूलिटीना ने लगातार गेम्स में 21-18 और 21-19 से हराया। हैदराबाद की 26 वर्षीय साइना नेहवाल से जीत की उम्मीद की जा रही थी क्योंकि उनका मुकाबला उनसे कहीं कम रैंक के खिलाड़ी से था। इस हार के साथ ही जो रियो ओलंपिक है वहाँ पर भारतीय जो खेमा है वहाँ पर एक उदासी, एक मायूसी दिख रही है। और रियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नॉरिस प्रीतम। नॉरिस जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपकी आवाज़ में जो एक दुख या एक अफसोस झलक रहा था वो तो हम महसूस कर ही चुके हैं, बताइए क्या हाल है वहाँ भारतीय खेमे का?
बस आपने मेरी हालत तो बता ही दी है और वही हाल बाकी पत्रकारों की और भारतीय खेमे की है, क्योंकि साइना का बेशक मेडल ना आता या गोल्ड नहीं आता, सिल्वर नहीं आता, ब्रॉन्ज आता, लेकिन कम से कम आज का ये मैच उन्हें नहीं हारना चाहिए था। ये बहुत बड़ा झटका है, जैसे कि आपने खुद बताया कि 61वीं रैंक प्लेयर से अगर हार रही है साइना तो ये अपने आप में बहुत दुखद समाचार है। और अच्छा खेल रही थी सेकंड गेम में, बस आके जो अक्सर वो गलतियां करती हैं, नेट नूट में मार दिया और वो सब उनका हो जाता है, जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा करती हैं। बहरहाल वो बाहर हो गई हैं प्रतियोगिता से, क्योंकि वो अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर हैं और उससे इसलिए वो बाहर हैं। और फिलहाल इस वक्त जो है वो महिलाओं की मैराथन चल रही है और उसमें भी न्यूज़ कुछ अच्छी नहीं है। ओपी जैसा जो है वो 61वें स्थान पर चल रही हैं और कविता रावत जो है 118वें नंबर पर चल रही हैं। और सबसे अच्छी बात है उसमें कि सऊदी अरेबिया और बहरीन की लड़कियां हैं जो पहले 10 में चल रही हैं, जो अपने आप में एक बड़ी अलग चेंज सिचुएशन या अवस्था बदलने वाली बात है कि जो महिलाओं का जहाँ पे खेल नहीं होता उस कंट्री की वहाँ पे लड़कियाँ पहले 10 में चल रही हैं। और दूसरी खबर भारतीय खेमे से ये कि करीब अभी 2 घंटे के बाद सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना ब्रॉन्ज मेडल के लिए उतरेंगे मैदान में। तो अगर वो एक मेडल आ जाता है तो मेरा ख्याल है शायद मेरी आवाज में कुछ जोश आ जाए और बच्चों के भी जोश आए, नहीं तो हम खाली हाथ ही लौटने वाली बात हो रही है। और उसके बाद शाम को करीब 4 घंटे बाद दीपा कर्माकर जो है वो वॉल्टिंग के फाइनल में आएंगी, उनसे भी एक अच्छी उम्मीद है, वो काफी अच्छा कर रही हैं। और यहाँ जो लोग देख रहे हैं अमेरिका के कोचेज हैं और बाहर के जापान के कोचेज हैं, वो बड़े इनको ध्यान से देख रहे हैं, उन्हें भी लग रहा है कि ये कुछ करने वाली लड़की है भारतीय। और अगर भारत से हटकर निगाहें लगाएं ओलंपिक पर तो सबसे बड़ी खबर आज की ये होगी, जब उसेन बोल्ट रात को करीब 8:30-9 बजे यहाँ के टाइम से भागेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, पूरी दुनिया की निगाहें उन पर रहेंगी। और मेरा ख्याल है कि भारतीय खेमे में वही अब एक थोड़ी सी हंसी ला सकते हैं, नहीं तो हम सब यहाँ पर बहुत उदास हैं।
जी नॉरिस जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और हम आपसे अगले कार्यक्रम में भी लंबी चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है प्रमुख समाचारों का।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान ने आज अपने स्वाधीनता दिवस को कश्मीर के नाम किया है। भारत के राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान के रुख की कड़ी आलोचना की है। नाइजीरिया के चरमपंथी संगठन बोको हराम ने करीब 50 लड़कियों की मौजूदगी वाला एक वीडियो जारी किया है। संगठन का दावा है कि ये साल 2014 में चिबोक से अगवा की गई छात्राएं हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की पुलिस ने एक इमाम सहित 2 लोगों की हत्या के मामले में एक संदिग्ध का स्केच जारी किया है। पुलिस का कहना है कि ये मानने का कोई कारण नहीं है कि कल हुई हत्या के पीछे कोई धार्मिक कारण था। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया वात्सल्य राय ने और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं हेमंत कुशवाहा। आपसे 1.5 घंटे बाद घटनाचक्र में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। निखिल गोदी जी अनुमति, नमस्कार।